आज आपके मेरे लिए क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं? डिस्ट्रैक्शन समझते हैं ना, क्या चीज़ है जो हमारी तवज्जो ले जाते हैं? उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ लस्ट है, रोमांस, इश्क, मोहब्बत। आज के दौर में तीन लफ्ज़ लिखिए, मैं बोलूँगी भी नहीं, आप वैसे ही समझ जाएंगे, तो आप जो चाहे गंदगी और बेहूदगी देख लें। इस्लाम में नस्ब की हिफाजत एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है। हर पैदा होने वाले बच्चे को पता चलना चाहिए कि वो किसका बच्चा है, उसकी नानी दादी फुफ्फो कौन है। सूरत नूर अगर आप कभी आप पढ़ें तो आपको उसमें जिना और उससे मिलती हुई चीज़ें मिलेंगी। इस्लाम ने जिस चीज़ को हमारे सामने रखा है वो क्या है कि तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी पाकीज़गी और इतनी प्योरिटी के साथ गुजारो कि तुम जन्नत में पहुँच जाओ। वाक्य हमने सुन लिया आदम और हवा का, जब लिबास उतरा शैतान ने ये कहा था कपड़े उतार दो? नहीं, इनडायरेक्ट हिडन मैसेजेस ऐसे दिए थे कि जिसके बाद लिबास उतर गया। आज भी दुनिया में शैतान की यही टैक्टिस है, यही वर्किंग मेथडोलॉजी है कि वो दिन ब दिन हमारे लिबास को हल्का करता जा रहा है। जो वाक्य सुना है ना उससे बिल्कुल अगली आयत में आप जाके देख सकते हैं, आयत 26 में आता है, या बनी आदम, ए बनी आदम, कद अनज़लना अलैकुम लिबासन, बेशक हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है। अनजला ऊपर से उतारा, यानी रिस्पेक्ट दी जा रही है कि लिबास कोई छोटी चीज़ नहीं है। करता के युवारी सवातिकुम, तुम्हारी शर्मगाह को छुपा लेता है। पहला मकसद, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए जिससे हमारे जिस्म के काबिले शर्म हिस्से छुपे। चलिए वो तो छुपे, लेकिन आप देखिए हमारे जिस्म के कितने ऐब लिबास छुपाता है। हमारे जिस्म पर हो सकता है कोई स्टेन हो, लिबास ने छुपा दिया। बाल हो सकते हैं, आप देखिए कि बगैर कपड़ों के एक इंसान क्या है, गोश्त का लोथड़ा। एक बकरा जो लटका होता है किसी कसाई की दुकान में, उसमें और एक नेकेड बॉडी में क्या फर्क है? आप फितरत के एतबार से देखिए और अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ अपने आप को तसव्वुर में लाएं, लिबास कितनी बड़ी नेमत है। अगर हमें बगैर लिबास दूसरों के सामने आना पड़े तो गाय भैंस ही लगेंगे ना। बेलिबास इंसान फितरत से दूर है, लेकिन शैतान ने क्या किया? पूरा लिबास नहीं उतरवाया, कम कर दिया। क्या किया? कपड़े पहनो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस्म ना छुपे। इस्लाम में लिबास की दो शरायतें, नोट कर ले, आज चले यही सही आपके मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे बड़े मकसद से दूर करने वाली चीज़ों में लिबास है, हर एंगल से। कैसे? पहली बात है कि शैतान ने हमारे लिबास मुख्तसर करवा दिए। उसको ना देखें पहले, इस्लाम का मिजाज समझे। आप मुझसे सवाल कर लें कि इस्लामिक ड्रेस कोड क्या है, क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, पेंटे पहन सकते हैं कि नहीं, चूड़ी पजामा पहन सकते हैं कि नहीं, साड़ी पहन सकते हैं कि नहीं। 10-12 लिबास के नाम ले लीजिए जो भी हमारे कल्चर में मारूफ हैं, सवाल कीजिए हम क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते। इसका जवाब दो लफ्ज़ों में है। इस्लाम ने लिबास की दो शरायत रखी हैं। पहली क्या लिबास है? युवारी सवातिकुम, कि तुम्हारे जिस्म के काबले शर्म हिस्सों को छुपाए। वह दूसरा वरीशा, और खूबसूरत भी हो। पहली बात पता चली, कपड़े वो होने चाहिए जिससे जिस्म छुपे। इसकी दो कंडीशन है, मैं अरबी की बोल देती हूँ फिर उर्दू में आप समझ जाएंगे, शफाफ ना हो और वसाफ ना हो। शफाफ है सी थ्रू, कपड़ों के अंदर से अंडर गारमेंट्स भी झलके, ये लिबास लिबास नहीं होता। इतने बारीक, इतने पतले, थिन, ऑर्गेन्जा, और आप नेट या कोई नाम ले लीजिए कि जिसमें से जिस्म झलके, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और दूसरी बस साफ ना हो। बस साफ क्या होता है? वसफ बयान करने वाला, टाइट, सी थ्रू एंड टाइट। और टाइट क्या? कि जिस्म के ऊपर एक खाल के ऊपर एक और खाल चढ़ा दें। ये दो चीज़ें लिबास में नहीं हो सकती। इसके बाद वरीशा, खूबसूरत हो, मोती लगाइए, कढ़ाई कीजिए, फूल लगाइए, गहरा रंग पहनिए, हल्का पहनिए, आपको पूरी इजाज़त है। मुकैश कर लीजिए, दबका करवा लें, जो खूबसूरती आप अपने लिबास पे करना चाहते हैं हलाल है, कीजिए, कोई मना नहीं करता। औरत का लिबास तो मर्द से बहुत फ़र्क होता है। सफ़ेद बिल्कुल वाइट कपड़ा पूरा औरत को पहनना पसंदीदा नहीं है, क्योंकि वो मर्दों और मुर्दों से मुशाबहत है। अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने औरत की फितरत में रखा, अच्छी लगे, फितरत है। इन्नल्लाह जमीलुन जो हिब्बुल जमाल, बट इन तीन चीजों पे आज जाकर अपनी वार्डरोब को चेक कर लें, आप और मैं। आपके पास वार्डरोब है, अलमारी है, कोई कमरे में खाना ही मिला हुआ है घर में छोटा सा जिसमें कपड़े हैं। आज आप और मैं हम सब अपने हर कपड़े को एक एक नजर ऐसे उठाएं, शफाफ और वसाफ तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। दूसरा पकड़े, सी थ्रू तो नहीं है? और आज सी थ्रू से ज्यादा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैं उसका जिक्र करना अपना फर्ज समझती हूँ, वो बस साफ है। आज पजामों के नाम पे, ट्राउजर्स के नाम पे, जो कपड़े बच्चियाँ क्या औरतें भी पहनती हैं। आज से 5 साल पहले मैं कह सकती हूँ कि 2 साल की बच्ची भी वो लेगिंग्स पहन ले तो बड़ी बात थी, जो आज की औरत पहनती है। देखिए, एक छोटी सी मिसाल समझिए। इस्लाम आपका मेरा दुश्मन नहीं है, वो हमारी हिफाजत चाहता है। ये जो गंदे केस होते हैं, जो जैनब का केस पिछले दिनों में हुआ, उसकी वजूहात में ये भी है कि बच्चियां पहन के क्या निकलती हैं। जब स्लीवलेस फ्रॉक है, स्लीवलेस कमीज़ें हैं, टाइट शर्ट्स हैं, छोटी शर्ट्स हैं, जिस्म झलकता है, तो मर्दों के अंदर शहवत तो आएगी ना। कोई कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको देख कर या तो किसी के अंदर इश्तहा, और दूसरा भी मेयार याद रखे कि जिसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। मैंने एक मेयार अपने लिए रखा हुआ है, इस कपड़े में मैं नमाज पढ़ सकती हूँ? शादी में गई हूँ, ये कपड़े पहनने में नमाज पढ़ सकती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस कपड़े में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, समझ लिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग, वो आप बाहर भी नहीं पहन सकते। तन्हाई की बात और है, शादी के बाद की बात और है, शौहर बीवी हैं और बात है, लेकिन आम तौर पे लिबास का ये मेयार है कि आपका फिगर उसमें प्रोमिनेंट ना हो। अब आप देखिए कि जब हम जिस्म के ऊपर एक खाल की नमा, जैसे आप देखिए ना कि स्किन होती है ना, लेदर, भैंस के ऊपर भी है, गाय के ऊपर भी है, आप उसके ऊपर फिर एक बिल्कुल उतनी ही मोटी खाल पहना दें, फर्क क्या लगा? सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने आपको मुझे लिबास क्यों दिया? जानवरों से अलग करने के लिए। एक जुमला लिख ले, जानवर कपड़े नहीं पहनते, इंसान कपड़े पहनता है। ये स्किन कलर की खाल है ना मेरे आपके ऊपर, ये अल्लाह ने खुद ही दे दी। जानवरों में क्या किया, इस खाल के ऊपर बाल लगा दिए लंबे लंबे, जैसे बंदर, और इसी तरह फर वाले जानवर होते हैं, बकरी भैंस, ठीक है। कुछ के ऊपर छोटे छोटे वो कर्ल्स डाल दिए, जैसे मछली है तो उसके ऊपर वो उसके खूबसूरत से वो क्या बोलते हैं उसको, स्केल्स लगा दिए। अपने ऊपर लीजिए, अगर मैं और आप भी ऐसे ही होते। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारा फिगर जो है ना, वो डीफिगर हो ले, दूसरों को दिखने में पता ना चले कि आप मोटी हैं कि पतली हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि जब आप ढीला ढाला सा, जैसे इस वक्त भी आप, मैंने आपने पहने हुए कपड़े, हमारा चेहरा दिख रहा है, हमारे हाथ दिख रहे हैं, पाँव भी खुल सकते हैं, लेकिन 100% हमारा फिगर ना दिखे तो कोई फर्क पड़ता है? आप देखिए कि दुनिया में कोई भी काम करने की चीज़ें होती है ना, मसलन आपका वैक्यूम क्लीनर है, ज़रूरत के लिए ना। फ्रिज बिल्कुल सीधा होता है, लंबा सा चौड़ा सा, वैक्यूम क्लीनर आप देखिए ट्विस्टेड होता है। वजह के फ्रीज़र या फ्रिज की ज़रूरत कुछ और है, उसमें चीज़ें रखनी है। आप कहते हैं नहीं, मैं अपने फ्रिज को बड़ा स्लिम स्मार्ट बनाती हूँ, उसके अंदर ऐसे कमर की तरह झोल हो, तो आप कुछ नहीं रख सकेंगी ना। आपको मुझे जो फिगर मिला है ना, इसके हर पार्ट का कोई मकसद है। आप नोट कीजिए, आपको सबको पता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जुबान बोलती है, जिस तरह जिस्म पे, चेहरे पे, हाथों का, पाँव का, हर एक का मकसद है, इसी तरह हमारे फिगर की भी ज़रूरत है। मसलन चले हम मर्दों को अलग कर दें, औरतों का फिगर मर्दों से ज़रा करवी होता है। अल्लाह ने क्यों दिया ये गाँव? माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, ये दूध की फैक्ट्री अल्लाह ने लगाई औरत के साथ, मकसद था ना। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए अगर अल्लाह ने औरत के जिस्म में कुछ कर्व्स डाल दिए, तो क्या आप इसको नुमाया करके दूसरों को दिखाएंगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा एक ना समझी की बात हो सकती है। आमतौर पे तो हम चीज़ों को बहुत सीधा स्ट्रेट रखें तो पसंद करते हैं, लेकिन शैतान ने, ये आयत याद रख लीजिए कि शैतान का असल गोल आदम और हवा को वो फल खिलाना नहीं था, उसका गोल था कि इनके कपड़े उतरें। आज भी शैतान उसी लड़की, उसी औरत, उसी बच्चे बड़े के साथ कामयाब हो जाता है जो उसकी बातों में आकर अपने कपड़ों को ख़राब करता है। तो सिंपल सी बात है, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन वो पहने कि जिसमें आपका फिगर नुमाया ना हो। दूसरी बात देखिए, रीश की भी एक हद होती है। देखिए, रीश अरबी जबान में ना परों को कहते हैं, फेदर्स, परिंदों के पर, और आपने देखे होंगे परिंदे कितने खूबसूरत होते हैं, कलरफुल भी होते हैं। लेकिन क्या इसको गोल बना लेना चाहिए जिंदगी का? यानी आपसे मैं पूछूं, आपकी मेरी जिंदगी का गोल क्या? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? अफहसिब तुमन्ना मा खलकना को मबसा, क्या तुमने ये सोचा कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? तो आप कहती हमारी जिंदगी का मकसद है कपड़े पहने। आपकी अम्मी से पूछे वो, क्या आपकी जिंदगी का मकसद है खाने पकाए? तो क्या ये मकसद है? आज शैतान ने क्या किया, हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कपड़ों के मामले में और खाने के मामले में भी, दोनों ये हमारे दो बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन पॉइंट हैं जन्नत के हसूल में। कपड़ों के मामले में इतना कॉन्शियस कर दिया कि हम ब्रांड से नीचे बात ही नहीं करते। देखिए, मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैंने एक चीज़ फील की है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वक्त के साथ साथ चीज़ें नाम बदल के मारूफ हो जाएंगी। हदीस है, खुलासा बता रही हूँ, कोट नहीं कर रही। आपने फरमाया कि लोग शराब पियेंगे नाम बदल देंगे, लोग हराम का नाम बदल देंगे, जैसे सूद काली कमाई, सूद कहते हैं काले को, आज आप उसको इंटरेस्ट कह लें, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। फरमाया कि लोग गुनाह के कामों के नाम खूबसूरत रख लेंगे तो उसको करेंगे जैसे गोल्डन कोटेड कर दिया जाए। इसी तरह से आप देखिए कि आज के दौर में शैतान ने हमें, और मैं अफसोस के साथ कहूँगी हम मुसलमानों को, और मैं चूँकि पाकिस्तानियों की ज़्यादा जानती हूँ तो हम पाकिस्तानियों को इतना कॉन्शियस कर दिया इस मामले में। मैंने कभी गोरों को एक एक शादी पे इतने कीमती और महंगे कपड़े बनाते नहीं देखा, या शायद मैंने देखा ही कुछ नहीं। फिर एक जोड़ा होता है वेडिंग का, अमेरिका की बात बता देती हूँ, बाकी मुल्कों में भी ऐसे ही है, दुल्हन का जोड़ा किराए पे मिलता है, वाइट लंबा गाउन, फैंसी गाउन होता है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते और वो सोच नहीं सकते हमारी तरह के वो 5-6 लाख रुपए का जोड़ा बना लें। एक दुल्हन ने वो जोड़ा किराए पे लेना, पहनना, फिर ड्राई क्लीन करके वापस दे देना, और एक एक जोड़ा 10-10, 20-20 दफ़ा भी किराए पे देते हैं। आप उनके पास कपड़े देखें तो कितने को कपड़े होते हैं जो पहनने में, या एक आधा दूसरा होगा। आज हम मुसलमान कपड़ों के पीछे कितने लग गए, आज घर जाकर चले, आज नहीं वीकेंड पे कर लें ये काम, काउंट करें अपने जोड़े, मेरे पास कितने कपड़े हैं, ये गर्मियों वाले, ये सर्दियों वाले, ये खुले मौसम के, ये बहार वाले, अच्छा ये एक वाण तो मौसमी हो गई, ये कैजुअल है, ये नॉन कैजुअल है, ठीक है, ये वेडिंग ड्रेसेस हैं, ये पार्टी ड्रेसेस हैं, चलिए कोई हरज नहीं, हर तरह का एक एक दो दो रख ले, मसला क्या हमारा कि लाइनें लगी हुई हैं। और फिर अलमारी खोल के कहते हैं मैं पहनूं क्या, अम्मी कपड़े नहीं हैं, ये मकसद था, ये डिस्ट्रैक्शन है, पहनी है, ज़रूरत है। ये ऐसे जैसे मैंने यहाँ आना था और आपने भी आना था, बैठना था इधर, और हम यहाँ आने के इतने बड़े मकसद को भूल कर सिर्फ घर में अपने कपड़े सिलेक्ट कर रहे होते हैं और हम यहाँ आने से महरूम हो जाते हैं। चले बुटीक पे जाते हैं, पहले आज के लिए जोड़ा लेकर आते हैं, फिर इधर आएंगे, तो डिस्ट्रैक्शन होगी ना। आज हमारी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बाजार है, आज यहाँ हमारे बाजारों की रौनक बताती है कि यहाँ दीनी इदारे इतने वीरान क्यों हैं। आज की औरतें बाजारों को जब रौनक दे दी ना, तो फिर दीन सीखने सिखाने वाली जगह क्या हो गई ये हम सब जानते हैं। वजह क्या है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। एक शादी आती है, हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। अब आप बच्चियां हैं, आप अपनी ज़िंदगी का ट्रैक अभी से दुरुस्त करें, आपकी अम्मियाँ जो करती हैं उनको करने दें, अल्लाह उनको भी समझ दे देगा, अपनी ज़िंदगी में गोल बनाए। टाइम इज़ लाइफ, मेरी ज़िंदगी असल में वक्त का नाम है। 3 घंटे में अगर आपने पेपर पूरा ना किया तो आप अगले साल के लिए प्रमोट नहीं होंगी, आप इसी क्लास में रह जाएंगी। इतनी कीमती ज़िंदगी जिसका एक एक सांस गिना हुआ है, अल्लाह क्या हमारी ज़िंदगी सांसों में है, एक एक सांस जो आपका मेरा गिना हुआ है, क्या आप और मैं उसको सिर्फ इन बेकार चीज़ों में डाल देंगे? कल क़यामत के दिन पता चला लोग ऊपर 100वें दर्जे की जन्नत में पहुंच गए, जन्नतुल फिरदौस, और हम कहे अल्लाह ताला नहीं, हम तो बहुत मसरूफ़ थे ना, मेहनत नहीं कर सके, हम तो बाकी चीज़ों में थे। हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये याद रखिए, इस वक्त से बेस्ट यूज़ क्या ले सकती हूँ। ये सब टाइम वेस्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को ज़ाया करते हैं, लिमिट पे रखिए। और अगर आप एक कपड़ा दोबारा पहन लें तो इससे क्या पता चलता है? कितनी बच्चियाँ जो एक जोड़ा दोबारा फिर किसी दूसरी दोस्त की शादी में भी पहन सकती हैं, वो हाथ खड़ा करें, बड़ी मुश्किल हो रही है। आप जरा सा सोचें इसको, मैं आपको सोचना सिखा रही हूँ, फिर बाकी बातें आप खुद ही कर लेंगे। आप देखिए, आपने एक दफा एक सूट पहना और दोबारा कभी ना पहना, क्या इसका ये नहीं मतलब कि वो आपका ही नहीं था? आपने किसी से एक दफा बोरो किया? मैं अक्सर कहती हूँ कि आप एक जोड़ा कम से कम 2-3 दफा पहन के दिखाएं, ताकि अगले को यकीन हो जाए कि ये आपका अपना है। किसी से एक दफा लेंगे ना, दोबारा तो नहीं लेते। चलिए जरा से इस माइंड सेट को चेक करते हैं कि होता क्या भला हमें, कि एक जोड़ा बार बार दोबारा पहन लिया तो क्या बेइज्जती होगी? देखिए ना, शादियों में इतने महंगे कपड़े बनते हैं, और स्पेशली माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जब घर में किसी करीबी की शादी हो, बहन की, भाई की, अपने बच्चों की, अपनी शादी, अब हम भारी जोड़े बनाते हैं ना, और फिर उस पर खूब पैसा लगता है, फिर मैचिंग, फिर सब कुछ। अब जब वो बना लिया, आप 10 दफ़ा पहन लेना तो कीमत पूरी हो जाएगी। मसला क्या हुआ? आपने शादी पे पहन दिया, अब वो एक हैंग हुआ। हैंग होना समझते हैं? ये जो हमने घरों में बहुत सारी चीज़ें हैंग की हुई है ना, वो बेचारों को सजा दी हुई है कि सूली पे चढ़ जाओ। अब आप देखिए, आप उसको जब अलमारी खोलते हैं तो देखते हैं, अब इतने में क्या हुआ, एक कोई दूर पार की शादी आ गई तो वो जोड़ा पहन, ना ना नहीं इतना भारी जोड़ा मैं पहनूँ? आप वो भारी जोड़ा फिर दूर की शादियों पर क्यों नहीं पहनते? तो बहुत हैवी है, शर्म आएगी, लोग कहेंगे इसको बड़ी खुशी है इस शादी की। चलो ठीक है, आप अक्लमंद हैं, आपने रख लिया। एक साल गुजर गया, आपके दूसरे भाई की शादी आ गई, तब तो फिर करीबी शादी आ गई ना, तो अब आपको वो जोड़ा निकालना चाहिए ना। मामा कहती हैं बेटा वो जोड़ा रखा हुआ है ना, आप कहेंगे फिर वही पहनो। देखिए, करीबी में आपने दोबारा नहीं पहनना और दूर में आप पहन नहीं रहे, तो उस जोड़े को सजा किस बात की दी हुई है? ये गलत है, करें क्या फिर? अब ये एक बड़ा बिग मसला है, ये तो कैबिनेट में जाना चाहिए, अब गवर्नमेंट को अगले साल के लॉ में देना चाहिए इशू के औरतों के ये मसले हल करें। हालांकि मेरे पास उसकी बहुत सारी टिप्स भी हैं, तरीके भी हैं कि आप क्या करें उन जोड़ों के साथ। ना पहने ये भी ठीक नहीं है, बार बार पहने ये भी ठीक नहीं लगता, लोग कहेंगे वाकई साल बाद शादी आई है तो इसने वही जोड़ा पहना है। पहली बात ये बताइए कि हमारे लोगों की मेमोरी इतनी तेज़ है कि उनको याद रहता है आपने पिछले साल क्या पहना था? तो फिर उन सबको हिप्स पे लगा दें, आप उन सबको लफ्जी तर्जमे पे लगा दें, इतना अच्छा उनका माइंड है। कुछ को तो अल्लाह की पन्ना एक एक बात याद होती है। अच्छा ठीक है, मेमोरी याद नहीं, आपको पता किन के याद रहते हैं जोड़े? मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ ताकि आपका जोड़ा अगली शादी में किसी को भी नहीं याद होगा। कोई मुझे बता सकता है मैं क्या कहूँगी? सिर्फ उनके जोड़े याद रहते हैं जिनकी मूवीज़ बनती हैं, और वो मूवी 2-4-6 दफ़ा लोग देख चुके होते हैं। सच है कि झूठ है? जिनकी मूवी नहीं बनती और हम जैसे अगर चले भी जाएं तो बायों में उठ के आ जाते, उनके जोड़े किसको याद रहते हैं? हमेशा एक याद रखो बात, अपने लिए पहने। अच्छा सा सूट बनाया ना, अब करें क्या? अब आप तो सभी अनमेरिड बच्ची ही होंगी ना, ऐसी है या आप सब अनमेरिड? मैरिड कितनी है सिस्टर इस हॉल में, हाथ खड़ा करें। थोड़ी ही है। चले आप अपने आने वाले वक्त के लिए याद कर लें, आपने एक अच्छा जोड़ा बनाया ना शादी का, भाई की शादी पे अच्छा सूट बना लिया, तो क्या आप ज़रूरी है कि वो सिर्फ आप शादियों में पहने? क्या आप अपने घर में नहीं पहन सकते? मियाँ का भी कोई हक है, आप उसको अच्छा जोड़ा पहन के दिखा दें। कब पहने आप, सवाल पैदा होता है, मियाँ ने कहना पागल हो गई हो। देखिए, जो अपने लिए पहनता है ना, वो मौक़ों का इंतज़ार नहीं करता, अच्छा लगने को दिल करता है। अपने लिए घर में पहन लें। मसलन मैं अक्सर साथियों को कहती हूँ, आपकी सूरत बकरा पूरी हुई, कितनी बड़ी खुशी है। क्या आप कुरान पढ़ रही थी, आज आपकी सूरत बकरा पूरी हुई। अब आप अपनी ये खुशी दूसरों को, यानी घर के दूसरे अफराद को दिखाना चाहते हैं। आज खूब घर साफ करें, अच्छा सा खाना पकाएं, उस दिन पुलाव पकाएं, गोश्त पकाएं, वैसे तो अब रोज़ ही पकते हैं, लेकिन कुछ समथिंग स्पेशल कि दूसरे पूछें खैरियत है, क्या बात है, तो आप उन्हें बताएंगे आज मेरी बड़ी खुशी है, मेरा आज एक पारा पूरा हुआ है, आज मियाँ साहब घर में आए, आप जरक बरक जोड़ा पहन के बैठी हैं, क्या हुआ मियाँ साहब, आज मेरी सूरत बकरा पूरी हुई है। सच बताएं, नहीं बरते? क्या हमारे शौहर इस काबिल नहीं है कि हम उनके लिए पहने? हम अपने बच्चों के लिए नहीं पहन सकते, अपने लिए नहीं पहन सकते? हदीस में आता है कि जो दिखावे के लिए कपड़े पहने शोहरत के लिए, उसको क्यामत के दिन खुजली का कुर्ता पहनाया जाएगा। भला क्यों? आप इसकी एसोसिएशन देखिए, हम अच्छे कपड़े क्यों पहनने के लोग देखें, और फिर लोग देख भी लें ना कोई एक लफ्ज ना बोले, सारी उम्मीदों पे ओस पड़ जाती है, यकीन कीजिए। अच्छा, आपका दिल चाह रहा था लोग देखें, तो क़यामत के दिन ख़ारिज करेंगे, लोग देखेंगे, क्योंकि जब कोई बहुत ख़ारिज करे सब देखते हैं। कभी दिखाने के लिए ना पहने, तहदीस नेमत के लिए पहने। और तहदीस नेमत क्या होती है? अल्लाह की नेमतों को बयान करना, दिए अल्लाह ने पहन रहे, खुश हो रहे, बेटे की शादी है पहनूंगी, आज कोई घर में अच्छी बात होगी, खुशी से पहने। आप दूसरों को दिखाने के लिए जब पहनते हैं ना, तो उसका नुकसान क्या होता है? मसलन बड़ी मेहनत से जिहाद किया, एक जोड़ा बनाया, 10,000 रुपये लग गए, चले सस्ते से शुरू कर ले, आज तो सस्ता लगता है ये लफ्ज़ भी लोगों को। अब आप जोड़ा बना कर गई पहना, आप पे लेती हूँ, बच्चियों पे ले लेती हूँ, आपने फिर अम्मी से ज़िद करके उसकी मैचिंग ज्वेलरी भी ख़रीद ली। आजकल की माँ से वैसे ज़िद करनी पड़ती है? आप में से कितनी बच्चियाँ ये कहती हैं कि अम्मी मुझे बहुत कपड़े बनवा के देती हैं, वो हाथ खड़ा करें, एक भी नहीं है। कितनी बच्चियाँ जिनको अपनी अम्मियों से अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर जूते लेने के लिए ज़िद करनी पड़ती है, वो हाथ खड़ा करें, माशाल्लाह। अच्छा, इस हॉल में आप में से किस किस की माँ बैठी हैं? आप में से किसी की अम्मी भी बैठी हैं? वो हाथ खड़ा कर, आपकी अम्मी बैठी हैं। चले, अब आप देखिए कि आपको अपनी अम्मी से कपड़ा बनाने के लिए ज़िद करनी पड़ी ना, आपने जोड़ा बनाने की कोशिश की, बड़ी मेहनत से अम्मी मानी, मान लिया, जूता भी मैचिंग ले दिया, ज्वेलरी भी ले ली, फिर आपने ज़िद करके अपने का मैंने बाल भी बनवाने हैं, पार्लर भेज दिया आपको, गई बिंदी भी लगा ली, और क्या क्या करते हैं। अब खूब माशाल्लाह 16 नहीं तो 12 सिंगार करके गई, किसी एक ने आपकी तारीफ नहीं की हॉल में, बड़ा कड़वा घूंढता, किसी दोस्त ने नहीं कुछ कहा, किसी कज़न ने नहीं कहा, किसी आंटी ने नहीं कहा, सच बताएं उस शादी से खुश वापस आएंगे? बस ये समझाना चाह रही हूँ, सच्ची खुशी इसमें नहीं मिलती। और जूता चुभ रहा, हील लगी हुई है, पाँव जख्मी हो रहा है, वापसी पे यूँ उठा उठा के फिरती हैं औरतें, और वो बुंदे चुभ रहे हैं, और कपड़े देखे खुद पहनते हैं ना तो पीछे से चुभ रहे होते हैं, अंदर पहनने अपने लिए तो उल्टे पहने। याद रखे, इन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, ये वक्त गुजारी है। मूड अच्छा करने के लिए 2-3 जोड़े हों, कभी पलट के पहन ले, आपने खुश होना है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को गोल बना लें, हमारी नमाजें जाती हैं बाज़ारों में, और फिर जुल्म की हद क्या है कि रीश करते करते सवातिकुम छुपती नहीं है, वो कपड़े जो आप महंगे पहने और उसमें आपके बाजू खुले, डीप नेक है, और वो कपड़ों में जिस्म झलक रहा है, वो तो कभी भी नहीं खुशी दे सकते। हमेशा अपने लिए ये गोल बनाए कि हमने अपने आप को अल्लाह की निगाहों से देखना है। एक छोटी सी बात करके आगे चलती हूँ, जब तैयार होते हैं तो फिर पूछते हैं ना दूसरों से, कैसी लग रही हूँ, आईनों में देख रहे हैं। ये एक थी तो लड़की ना ऐसे घूर रही थी किसी को, बड़ा अजीब सा लगा, कहती मैं इसकी आंखों में अपना फेस देख रही हूँ कुछ की वो, लेकिन किसी सहेली के भाई ने तारीफ कर दी, पैसे बुरे हो गए। कोई कज़न कहता है आज तो गज़ब की लग रही हो, क्या मिलेगा आपको वहाँ से? इश्तहा मिलेगी। आज जिसको लव कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस, ये दूसरी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, और ख़ास तौर पे यूथ एज में, और आज हमारे लाइफस्टाइल, टेलीफोन पैकेजेस, और अल्लाह हिदायत दे हम सब को, एक लफ्ज़ बोलूँगी ऐसे लगेगा शायद हमारी नस्लें इसी नाम के साथ चली, और वो है वैलेंटाइन डे। मैंने ये लफ्ज़ बोला, आप में से किसी को ये नया लगा? कब होता है वैलेंटाइन डे? देख लीजिए, माजरत के साथ फौरन बग़ैर किसी से पूछे बताएं आज इस्लामी महीने की कौन सी तारीख है। दूसरी पूछ लूँ तो आपको बता होगा क्या है दूसरी? 9 फरवरी 2018। इस्लामी क्यों नहीं पता? ये बताइए कि इस्लामी महीने के साथ कोई चीज़ चलती है हमारे साथ पूरा महीना? चांद के साथ कुछ चलता है? चांद की 13 के साथ क्या होता है? 13th of month, यानी जैसे आप कहे के 13 रजब क्या होता है? 14th शाबान क्या होता है? 15th जमादुल अव्वल क्या होता है? देखिए, इस पे हमें सोचना पड़ रहा है। सिर्फ एक इस्लामी महीना जिसकी एक एक दिन की तारीख हमें बताती है। तो यहाँ से देखिए फिर हम कितने डी ट्रैक्ड हैं। 14 फरवरी, 14 फरवरी, वैलेंटाइन आपके लिए अपना, और 13 रजब आपके लिए नया। एक और सवाल पूछो, आपकी अम्मी को भी 14 फरवरी इतना ही याद है जैसे आपको याद है वैलेंटाइन के नाम पे? नहीं। थोड़ा सा पीछे चलिए, आप में से बहुत सारों की नानी अल्हम्दुलिल्लाह हयात होंगी, आपकी नानी भी 14 फरवरी के नाम पे इतनी फेमिलियर थी वैलेंटाइन के साथ? तो इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेड चीज़ है, ये बाहर से आई है, इसका हमारे इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और जिन मुल्कों में ये शुरू हुई थी, आज उनसे ज़्यादा जोश व खरोश से हमारे इस मुल्क में आती है। मुझे तनकीद की आदत नहीं है, मैं खोल के वो चीज़ें नहीं पसंद करती बताऊँ आपको ये करो, क्योंकि वो तो दुनिया सारी आपको खुद ही बता रही है। लेकिन पिछले साल, अभी ये तो फरवरी आया ना, इससे पिछले में मेरे ख्याल में उन दिनों में ओस्लो में ही थी, मुझे सिर्फ फेसबुक से कुछ झलकियाँ दिखाई। और चले वो तो पिछला साल है, उसको छोड़ दें, ये 20 साल की बात बताती हूँ। अभी ये बता सकते हैं कि अभी नवंबर में क्या गुजरा? मैदा लफ्ज़ बोलती हूँ जी, ब्लैक। अच्छा, और भी कुछ नवंबर में गुजरा? बोलिए शाबाश। चले चुड़ैलों का नाम लेती हूँ, जिन भूत, हेलोविन। हेलोविन को जानते हैं आप? अभी ये आने से पहले ये मामला हुआ, मुझे एक स्टूडेंट ने फेसबुक पे से कुछ पिक्चर्स दिखाई कि ये देखें, ये पाकिस्तान में जिस तरह से हेलोविन मनाई गई है, होटल्स और उसके अंदर का माहौल भूत बंगले ही लग रहे थे। पिछले 18 साल से मैं अमेरिका में हूँ, अल्लाह के हुक्म से आता जाना लगा रहा, लेकिन कहने की बात है कि 18 साल से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैंने वो कुछ उन मुल्कों में नहीं देखा। इन नामों पर होता है उधर भी, पर इस तरह से पब्लिसाइज नहीं होता जितना हमारे साथ है। क्या वो बंदा जो इतना मुख्तसर वक्त देकर दुनिया में भेजा गया, उसके पास इतना वक्त है कि वो ऐसी चीज़ों में वक्त गुजारे जिसमें इस्लाम के बेसिक टूटते हैं? आप कहते हैं कि जिना अकबरुल कबायर में से है, बड़े गुनाहों में से गुनाह, और ये एकदम नहीं होता। आज एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करे, उससे बात करे, उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और साथ ही ये कह दे कि आई एम इंटरेस्टेड, क्यों? क्योंकि मैंने इधर शादी करनी है, लिविंग टुगेदर। अच्छा, हमारी नस्ल में ये लफ्ज़ बुरे नहीं रहे, हमें ऐसे लगता है कि ये हक बन गया, हालांकि इस्लाम क्या कहता है? देखिए, आपको डराना नहीं जा रही, मैं सिर्फ आपको इसकी तबाही बताना चाहती हूँ। बुखारी की रिवायत का खुलासा है, अलैनानु तज़नियानु वज़िनाहुमुन नज़्र, आंखें भी जिना करती हैं, और आंखों का जिना गैर महरम को शहवत से देखना। शहवत का लफ्ज़ मैं खुद लगा रही हूँ, हदीस में लफ्ज़ नज़र है, लेकिन सहाबा को ये बात पता थी। आप ये ना समझ लें कि गैर मर्द को देखना ही जिना है, ये नहीं मुराद इससे। शहवत के साथ देखना, आंखें जानी हो जाती हैं, और जिना क्या है? कबीरा गुना। जिना वो है जिस पर कुरान की एक पूरी सूरत है। जिना करने वाला तौबा के बगैर अगर दुनिया से जाता है तो हलाकत है। आंखों का जिना के गैर मर्द को देखना, किस नज़र से? हाउ डैशिंग लुक एट हिम, हाउ स्मार्ट ही इज। और इसके लिए सामने बिठाना ज़रूरी नहीं, स्क्रीनें भी दिखाती हैं आज। कितना कॉमन लफ्ज़ है हमारे कल्चर में, मैं उसकी फ़ैन हूँ। अदाकार है, कोई गुलूकार है, कोई क्रिकेटर है, कोई कुछ भी करता है, कोई दीन सीखता सिखाता है, कोई दीनी स्कॉलर है, अगर आप उसको देखकर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो इससे पीछे होना है। एक औरत एक मर्द पे नज़र गाड़ नहीं सकती, जैसे मैं आपको अगर आप देखूँ, मैं देख सकती हूँ, हालांकि ये भी नहीं अच्छा कि मुस्तकिल किसी लड़की को भी मैं देखूँ। नज़रें बचाने का हुक्म है, यगुद्दु मिन अबसारिहिम और यगदुत न मिन अबसारिहिन, ना मर्दों को भी यही कहा और औरतों को भी कहा। हम पर्दे की और लिबास की बात करते हैं तो फौरन बच्चियों पे आ जाते हैं, आप बच्चों की माएँ हैं ना, अगर अपने बेटों को नज़रें झुकाना सिखाएं। 7 से 8 साल का बच्चा, आपका बेटा आपको भी यूं खोल के नहीं देखे, बहन को भी नहीं देखें, क्योंकि आज आपको और बहन को देखेगा, बाहर लड़कियों को देखेगा। लेकिन आज तो हम 4 साल के बच्चे को कार्टूनों पे बिठाते हैं और वो आंखें खोल खोल के स्क्रीनों पे लड़कियां, बच्चे, लड़के, औरतों को देखते हैं। उनको ये बातें हमारी कहाँ समझ आएंगी। याद रखिए, आज हमें अपने मेन गोल जन्नत से हटाने वाली एक बहुत बड़ी चीज़ ये फिक्शन है, सोशल मीडिया। चलिए, आंखों का जिना बचेंगे इंशाल्लाह, नहीं देखना किसी को। अब क्या करें, कोई नज़र आ जाता है, जवानी में नज़र आ जाते हैं, लड़की है ना, उसके दिल में किसी लड़के का ख्याल आ जाता है, क्या करें? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल से इसका ख्याल निकाल दे, और अगर ये अच्छा लड़का है मेरे लिए तो खुद ही इसके साथ कोई ऐसा मामला मेरे माँ बाप का हो जाए कि मेरी इससे शादी हो जाए। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिस पर मैं आपको नहीं लेके जा सकती इस वक्त, टाइम मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमारा वैसे भी पूरा हो गया। लेकिन किसी लड़की को और लड़के को तनहा छोड़ देना, शादी नहीं करनी, वैसे मिल लो, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। आप 12 साल की हैं या 13 की, अगर आपको महसूस होता है ना कि आपको शादी करनी है, आपको इस्लाम ने पूरा हक दिया। अच्छे लफ्ज़ों में किसी के ज़रिए, खाला बुफो के ज़रिए माँ बाप तक पैगाम पहुँचा दें कि अम्मी अबू से कहें कि मेरी शादी कर दें, आपको बिल्कुल गुनाह नहीं होगा। इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है, पसंद भी करता है इस बात को। और अगर लड़का है वो तो खुद भी कह सकता है माँ बाप को कि मेरी शादी कर दो। या शादी है या जुदाई है, इससे अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं कि दो दो चार चार छः छः साल सिर्फ ताल्लुक हो। चलिए, आंखें तो हो गई, उसके बाद कान। फरमाया कान भी जिना करते हैं, और कानों का क्या है, गैर महरम के साथ ऐसी बातें करना सुनना। आज फ़ोन अल्लाह की नेमत था, चिट चैट, हर चीज़ खोल कर देखे। सिर्फ इस एक हदीस को मैं आपको काम देती हूँ, आप ढूंढें और इस हदीस को टेक्स्ट के साथ इधर किसी बोर्ड पे लिख के लगा दें। आंखें भी जिना करती हैं, कान भी जिना करते हैं, और हाथ भी जिना करते हैं। टच, गैर महरम को टच करना, शेक हैंड करना हाथों का जिना, जलता हुआ अंगारा हाथ में आने का खतरा। मैं कहती हूँ वो तो कल का था, ये आज की ये क्या है, ये देखे मेरे हाथ से, ये मैं क्या कर रही हूँ, चिट चैट, फ़ोन पे मैसेज, लैपटॉप पे मैसेज, स्काइप पे मैसेज, ये हाथों का जिना है। फरमाए कदम भी जिना करते हैं, क्या चलना, ये क्या डेटिंग, किसी को मिलने जा रहे हैं, ये कदमों का जिना है। फरमाए ये सारी चीज़ें जब हो जाती है ना, फिर उसके बाद या तो शर्मगाह इस चीज़ की तस्दीक करती है या तकजीब। यदि असल फेल जिना का कभी होता है, कभी नहीं होता, लेकिन बंदे के जिस्म का हर उस जिना पे मुलविस हो चुका होता है। इन सब से बचने का तरीका क्या है, अल्लाह से दुआ करें, नज़रों को पाक रखें, रोज़े रखें। हर वो चीज़ जो आपके अंदर इमोशनलिज्म लाती है, सेंटीमेंट्स हैं, उसको कंट्रोल करें ना। इतने अच्छे कपड़े बच्चियाँ पहनती थी पहले, और ना इतनी अच्छी लगती थी, और ना इतनी फिल्में मूवियाँ घरों में चलती थी, तो बच्चियाँ भी पाक थी। आज इन बच्चियों पर जुल्म है कि जिनके चारों तरफ वो सब कुछ है जो जज्बात को भड़काने वाला है, लेकिन शादी अभी नहीं कर सकते, अभी पढ़ना है, अभी जॉब करनी है, अभी सेटलमेंट है। शादियों को आसान करके इन चीज़ों को आम करने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि जवानी में एक धोखा जो बंदे को लग जाता है ना, वो क्या है कि फलां को मुझसे प्यार है और मुझे उससे प्यार है। वो प्यार नहीं होता, वो एक शैतान की तरफ से एक वो उकसाहट होती है। ज़रा कोई तारीफ करते लगता उससे अच्छा ही कोई नहीं है। एक बच्ची की बात सुना के अपनी बात पूरी करती हूँ। माँ उसकी मेरे पास लेके आई, उसको कहने लगी इसको समझाएं, इसको अकल नहीं है। क्या हुआ, सारी बात का जो एंडिंग खुलासा था, किसी लड़के से मोहब्बत है और वो लड़का भी क्या है, ब्लैक, नीग्रो, और नॉन मुस्लिम है, और ना काम ना काज, पढ़ते थे कॉलेज में, लड़की के साथ लड़का थे। तो ये कहती है मुझे वो अच्छा लगता है, मैंने उधर शादी करनी है, तो इसको समझाएं ज़रा। मुझे भी बड़ी हैरत हुई क्योंकि मैंने पाकिस्तानी लड़कियों को कभी इस तरह ब्लैक लड़कों से इन्वॉल्व होते नहीं सुना था। खैर, मेरी उस बच्ची से काउंसलिंग हुई, मैंने पूछा बेटा आपको क्या चीज़ उसमें अट्रैक्ट करती है, कहने की ही इज़ वेरी केयरिंग, मेरा ख्याल रखता है, मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो वो मुझे दवा पूछता है, और राहो रस्म बढ़े तो उसकी माँ को भी मिली हुई थी। कहती उसकी माँ मेरी बहुत केयर करती है और मेरे साथ दिस एंड दैट। खैर, किस्सा मुख्तसर, सारी बात का एंड क्या है, कि जब उसी लड़के से वास्ता पड़ा तो रो रो के बताने वाली बात है कि जो गलती मैंने की है वो कोई ना करे। याद रखिए कि माँ बाप बच्चियों से कम से कम भी 16-18 साल बड़े होते हैं, क्योंकि अमूमन हमारे कल्चर में 16 साल में शादी होती है ना। तो अब आप में से जिसकी भी शादी हुई अपने ऊपर ही लेकर देख लें कि पहली बेटी है अगर या बेटा है तो 17 साल की थी आप जब आपकी बेटी हो गई या बेटा हो गया। तो पहला बच्चा अपनी माँ से कम 16-17 साल छोटा ही होता है। एक औरत जो 16-17 साल बड़ी है आपसे, उसका और आपका तजुर्बा एक नहीं हो सकता। पांच दालों के नाम नहीं आते। थैला देकर भेजो लड़कों को, जाओ सब्जी लेकर आओ, फिर देखें क्या लाते हैं। क्या वो लड़कियां चूज कर सकते हैं? और वो लड़कियां जिन्होंने जमाने के धक्के नहीं खाए वो लड़के चूज कर सकती हैं? तो बस ये दुआ करें, ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी से निकलें, ट्रैक कीजिए। ये फितरी कशिश है, बट इसको टेम करने का नाम ही तकवा है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम असल मकसद पे चलें। आज से एक गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जन्नत में जाना है, और मैंने जन्नत में जाने के लिए वो सब करना है। आप मेरे सामने आयतें लिखी हुई हैं, पूरा वक्त मेरा दिल करता रहा ये पढ़ो। आप बाद में जाते हुए इनका तर्जुमा पढ़ें, और इस पर एक दर्स है अगर आप सुनना चाहें तो मैं रिकमेंड कर देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें कैसे खरीदी हैं। ये सूरत तौबा की आयतें, आप इनकी तफसीर सुन लें। चलिए ठीक है, फिर जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इस पे अमल करना आसान कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अल्लाह ताला हमारी नज़रों की, आँखों की, सेहत की, ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी ज़िंदगी को ज़ाया होने से बचाए, हमें जन्नत से कम किसी चीज़ पे भी मुतमईन होने वाला ना बनाए। और या अल्लाह हमारी जन्नत के रास्ते में जितनी डिस्ट्रैक्शन है हमारे अंदर, उसको हटाकर हमें इस किताब से जोड़ दे, ताकि हम बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें इंशाल्लाह। और इस पर एक छोटी सी बात कहूँ कि जो आखिरी टॉपिक है लव रोमांस, इस पर इंशाल्लाह हम एक पूरा सेमिनार करेंगे ऑनलाइन पे। कभी भी आपके कानों तक बात पहुँची, सब कुछ हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, यानी इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैटर मौजूद है, जो बाकी आज के दौर में मुझे लगता है कि हम सबको सुनना चाहिए। बिल्कुल भी गलत गलत कह के वो भी चीज़ें छोड़ दें इंसान के जो जायज़ हैं। तो जब भी कभी आपके कानों तक ऐसी कोई आवाज़ आए तो आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ठीक है।